તારીખ આયે 8/1/1998 શ્રી સમયસાર ગાથા 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 245
કુલ ચોથી ગાથા કા સ્વાધ્યાય હુઆ થા ઇસકા ભાવાર્થ હૈ કે ઇસ લોક મેં સમસ્ત જીવ સંસાર રૂપી ચક્ર પર ચડકર पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं, चारों गति में परिभ्रमण करते रहते हैं। वहां उन्हें मोह कर्म द्वय रूपी विचाश के द्वारा जोता जाता है। क्या वहां वहां वो मोहान्वित हुआ है? परिभ्रमण करने का कारण यह है कि वो मोह से मोहान्वित हुआ हुआ है। तो हमको भी हमारे लिए यही सोचना चाहिए कि जहां लगी हमारा मोह है वहां तक ये परिभ्रमण चालू रहने वाला है। इसलिए विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं और अपना स्वरूप का आनंद का अभाव होने से पर विषय में से आनंद सुख लेने का तृष्णा और उसकी आकुलता, दाह महीने उसकी आकुलता, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये छेड़ाला में बात है। सहज ही है, सहज होने से। सहज तो क्या है कि बहुत हुआ है तो सहज हो ही जाएगा, बहुत होने से सहज हो ही जाएगा। और इसका इस दाह का इलाज इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं, परिणाम दूसरा इलाज वो जानते नहीं। इच्छा होती है और इच्छा के इच्छित पदार्थ के पीछे परिणाम दौड़ने लगते हैं। इच्छा अगर प्राप्त होता है तो इच्छा शांत होती है, नहीं प्राप्त होते हैं तो आकुलता होती है। प्राप्त होना नहीं होना अपने अधिकार का विषय नहीं है, जीव के अधिकार का विषय तो है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में बहुत दुखी होता है। और परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। संसार का ही उपदेश देंगे संसारी जीव तो। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव भी अनंत बार किया है, इसलिए वह सुलभ है, सहज हो गई है, सुलभता से सहज हो गई है। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, अनंत काल में कभी अपने को अपने से वाहिनी के अंदर में सर्व परद्रव्यों से भिन्न ऐसा चैतन्य का चमत्कारिक आनंद, चमत्कारिक शांति सुख भरा है, इसका ज्ञान कभी नहीं हुआ। और जीने वो ज्ञान हुआ उनकी कभी सेवा नहीं की, खुद ने तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया और जिनके पास वो ज्ञान है, जहां से वो ज्ञान पा सकते हैं, उनकी शरण में गए नहीं। इसलिए उसकी कथा न तो कभी सुनी, न परिचय किया और न अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जीव धर्म के क्षेत्र में आता है, कुछ न कुछ क्रिया करता है, मोह को नहीं छोड़ सकता। इसलिए प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि संसार में से जीव को निकलना बहुत दुर्लभ है। अनंत जीवों में से कुछ एक जीव धर्म के क्षेत्र में आते हैं, इसमें से भी बहुत अल्प जीव मोह को छोड़ करके अपने आत्मा की प्राप्ति करता है। ऐसी परिस्थिति प्रत्यक्ष देखने में आती है। तो ये जो दुर्लभता की परिस्थिति है, वो बात जब हमारी समझ में आती है तो इसका परमार्थ क्या हमें समझना चाहिए। बात तो ठीक है कि जो परिस्थिति है वह परिस्थिति है कि इस संसार में अनंतानंत जीवराशि है, बहुत अल्प जीव इस प्रकार के सही धर्म में आते हैं, और सही धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करने वाले में अल्प जीव कोई जीव ही मोह को छोड़ करके संसार से बाहर निकल करके मोक्ष को पाता है, मोक्ष मार्ग को पाता है। जब ऐसी स्थिति है तो इसका परमार्थ हमको क्या समझना, हमको क्या लेना है? कि चाहे जितनी दुर्लभ परिस्थिति हो, हमको तो यही काम करना है, भले ही दुर्लभ हो, भले ही किसी एक जीव का नंबर लगता हो, हम हमारा नंबर लगाएंगे। ऐसा परमार्थ इसमें से अपने आप को निकालना चाहिए, या अंदर में से ये परिस्थिति समझ करके, सुन करके अपने को ये बात अंदर में से पैदा होनी चाहिए। ये बात भले ही कठिन है, बहुत कम जीव आता है, लेकिन हम तो छोड़ेंगे, हम तो इस मोह को छोड़ेंगे। इस मोह ने हमको बहुत परिभ्रमण किए कराया, बहुत नाच नचाया, अब हमको इस मोह के पिशाच के अंदर में नहीं रहना है। ऐसा परमार्थ अंदर से आना चाहिए। हम आचार्य कहते हैं, पांचवी गाथा का हेडिंग है कि इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। इस गाथा में आचार्य श्री निश्चय करते हैं कि इस ग्रंथ में मुझे क्या कहना है या कथन से क्या बतलाना है। बतलाने वाले कहने वाले सिर्फ कहते नहीं है, बताते हैं, कथन भी करते हैं और बताते भी हैं कि देखो ये शुद्ध आत्मा ऐसा है। ऐसी बात चली है इस गाथा में, पांचवी गाथा में। कहना आसान है, बतलाने के लिए तो अनुभव दशा चाहिए। तो ये भावलिंगी दिगंबर संत गुरु है, अपने प्रकट दशा के माध्यम से शुद्धात्मा बतलाते हैं, कहते भी हैं और बतलाते भी हैं।
जागृत चैतन्य की चेष्टा 825
अमृत चंद्र आचार्य की शैली में खुद की बात करते हुए वो करेंगे। प्रवचन साहब 200 नंबर की गाथा में ऐसा टीका करते हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रणेता हम स्वयं ही इधर खड़े हैं। हमें उभा मोक्ष मार्ग ना प्रणेता हमें उभा अहीं पण एवी लगभग बात करे छे। क्योंकि शुद्धात्मा की बातें तो बहुत लोग करते हैं, बात करना आसान है, यहां तो बतलाने की बात है। अतो एते ही अतः एव एतद् उपदेश एतद् उपदर्श्यते
बतलाने की बात करते हैं।
हाँ।
इसको खुलासा
है। उसमें क्या कहते हैं कि अपनी जो परिणति है जिसमें आत्मा प्रकट हुआ है वो बतलाते हैं कि देखो हमारी परिणति ऐसी है। हमारे हमारी परिणति से बात करते हैं, हम ऐसे विचार करके सोच करके कोई बात की बात करते हैं ऐसी बात नहीं है, कोई चीज की बात करते हैं ऐसे नहीं है। हमारी परिणति देखो, देखो हमारे परिणति से हम ये बात आपको बताते हैं। इसलिए अगर आपकी योग्यता होगी तो आपको भी हमारे परिणति के माध्यम से शुद्धात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, ऐसी बात है।
परिणति के माध्यम से होगा।
हाँ, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा को अनुसरण करने वाली परिणति स्वरूपाकार होती है, स्वाकार भाव है, वो स्वरूपाकार भाव है। परिणाम का तो स्वभाव है कि जिस पदार्थ का अवलंबन लेता है तदरूप तदाकार हो जाता है। पर पदार्थ में ऐसा हो जाता है तो स्वपदार्थ में तो होवे ही। पर पदार्थ में एकाकार हो जाता है, नहीं हो जाता है। लगता है कि मेरे को प्रतिकूल है तो रोने लगता है, कि मेरे को अनुकूल है तो बहुत खुशहाल हो जाता है। एकाकार होता है क्या? नहीं होता है, है तो तद्दन भिन्न। और ये तो अपना अभेद स्वरूप है, परिणाम उसमें लगे तो स्वरूपाकार हो ही हो। इसलिए स्वरूप का दर्शन ये प्रकट परिणति से होता है।
परिणति देखो इसलिए परिणति
परिणति इसलिए परिणाम नहीं क्रिया, विनप्ति इसलिए ज्ञान नहीं क्रिया, परिणति इसलिए परिणाम नहीं क्रिया, प्रकट परिणाम नहीं क्रिया थी। हीरो तो हीरो है, हाथ माथे पड़ी जाए पर दौड़ते हो तो तुरंत खबर पड़े, दौड़ते हो तो तुरंत नजर जाए। एक और पड़ी गयो है तो नजर में न आवे, पर दौड़ते हो तो हेलो हेलो जो तो तुरंत पकड़े कि न पकड़े। हाथ माथे पीड़ा पीछे स्थिर न थी हो तुरंत नीचे जो तो दौड़ते हो तुरंत देखा गति थी। एम स्वरूप का स्वरूपाकार परिणति थी, સ્વરૂપ ગ્રહણ થાય છે, એ પર્યાય પણ ઉપકારી છે, એ રીતે પર્યાય પણ ઉપકારી થાય છે. વસ્તુને બતાવવામાં, મૂળ સ્વરૂપને બતાવવામાં પર્યાય પણ ઉપકારી થાય છે. તમ યત વિયતમ દાયેહમ અપણો સવિ હવેણ જદી દાયજ પ્રમાણમ જદી દાયણમ પ્રમાણમ ચુકિજમ ક્ષળમ ન ઘેતવમ. યથાર્થ કે ઉસ એકત્વ વિભક્ત આત્મા કો મેં આત્મા કે નિજ વૈભવ સે દિખાતા હું, કહેતા હું નહીં, નિજ વૈભવ, વૈભવ એટલે સંપત્તિ, જે પણ પોતે આત્મશુદ્ધિથી આત્મા પ્રગટ કર્યો છે તે હું તમને દેખાડું છું. આત્માને દેખાડું છે મારા પ્રગટ પરિણમનથી દેખાડું છું, એ મારો નિજ વૈભવ છે. જે ગુણ પ્રગટા છે એ મારો નિજ વૈભવ છે, એ વૈભવથી હું તમને દેખાડું છું. યદી મેં દેખાડું તો પ્રમાણ કરના, પ્રમાણમ, પ્રમાણ કરને એને માન્ય કરજો. કેવી રીતે? કે હું અનુભવથી દેખાડું છું તો તમે અનુભવ કરીને માન્ય કરજો. ખાલી એમને ભાર નહીં પાડતા, એમ કે છે હું અનુભવથી તમને દેખાડું છું, તમે પણ અનુભવ કરીને માન્ય કરજો. એમને માન્ય નહીં કરતા, બૌદ્ધિક સ્તરે માન્ય નહીં કરતા, અનુભવના સ્તરે માન્ય કરજો.
અનુભવથી દેખાડું એટલે કેવી રીતે દેખાડે?
અનુભવીની વાણીમાં અનુભવની ઝલક આવે છે. શું? અનુભવની વાણીમાં અનુભવની ઝલક આવે છે, ત્યાંથી એ પરખાય છે. સવારે આપણે વૈદનો દ્રષ્ટાંત લીધો હતો ને, તો એને જ્ઞાન ઉપર વિશ્વાસ આવે ને, બરાબર. 15 દિવસ પહેલા સુખડી ખાધી હતી, એ તો કઈ આપણે ઘરે આવ્યા નતા, એને ક્યાં ખબર પડી. એમ તમને તમારા પરિણામો નો એનાલિસિસ કરીને તમને બતાવે ત્યારે તો વિશ્વાસ આવે ને, કે જે અનુભવ આપણને થઈ રહ્યો છે એની આપણને ખબર નથી, એને ક્યાંથી ખબર? એ એમ બતાવે છે કે એને અનુભવ છે. કૃપાળુદેવ લખે છે કે અમારી વાત છે એ તમને કદાચ શાસ્ત્ર માંથી મળી આવશે. શાસ્ત્ર એટલે અનુભવી પુરુષોની વાણી. કદાચ શાસ્ત્ર માંથી ન મળે તો પણ તમને અનુભવથી તો સમજાશે કે આ કહેનાર કોઈક અનુભવી છે. એમ ખ્યાલ આવે છે કે નથી આવતો? એમ કે જેનો જે વિષયમાં અનુભવ હોય, અનુભવથી જે પારંગત હોય, એ વિશે અછાનો ના રહીએ. એના માટે એમ કહેવાય છે કે સૂરજ છાબડે ઢાંકો ન રહીએ. સૂરજ છે એ ખાલી છાબડાથી ઢંકાયેલો ના રહીએ. છાબડા મેને ઇતના વો ગોબર ઇકઠ્ઠે કરને કે લિયે ટોકરી આતા હૈ, ઇતની સી ટોકરી આતા હૈ. ટોકરી કો ગુજરાતી મેં છાબડા કહેતે હૈ, છાબડા. છોટા સા ડાલા तो उसमें तो क्या है कि वो उससे से बनता है, वो तो सली से बनता है, तो उसमें तो फूल होता है। अभी सूरज पूरा सूरज को ढक देना है, कैसे ढकेगा, वो नहीं ढक सकता है। ऐसे अनुभव छिपे बिना छिपा ही नहीं जाता, नहीं छिपा रहता। वो तो है, वो तो हर बात में है। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो, कहीं चूक जाऊं मैंने बोलने में, कोई भाषा में, शब्द में, व्याकरण में, श्लोक के प्रास में, मात्रा में, छल नहीं ग्रहण करना। छल मैंने क्या कि छोटी बात को मोटी करके मोटी बात को छोड़ देना, इसका नाम है छल। जैसे बहुत बड़ा दृष्टांत स्थानकवासी संप्रदाय का है कि भगवान की जो प्रतिमा है वो वेद ज्ञान का कारण है मुमुक्षु जीव को, और ज्ञानी को ध्यान का कारण है। उनका निषेध किया हिंसा के, हिंसा का छल पकड़ करके, ये मंदिर वगैरह बनाने में आरंभ समारंभ होता है प्रतिष्ठा वगैरह में, और बहुत बड़ी हिंसा होती है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कृपालु ने कड़ा निषेध किया है इस विषय में, क्योंकि ध्यान का कारण है, स्वरूप ध्यान का कारण है। और एक दफे थोड़ा सा हिंसा होती है, लेकिन हजारों जीवों को सैकड़ों वर्ष तक ये ज्ञान ध्यान का कारण बनती है, इसलिए उसका निषेध किसी बाना पकड़ करके, बाना को या छल को पकड़ करके नहीं करना चाहिए। वही लोग मंदिर तो नहीं बनाएंगे लेकिन उपासना बनाएंगे, तो क्या इसमें हिंसा नहीं होती है क्या? अपने रहने के लिए मकान बंगला बनाएंगे तो इसमें हिंसा नहीं होती है क्या? इसमें तो होती है, लेकिन मंदिर के लिए निषेध करेंगे, भगवान के स्थापना के लिए निषेध करेंगे, तो इसका नाम कहते हैं छल। कि कोई एक बात को, छोटी बात को पकड़ करके मोटी करना, और इसके पीछे मोटी बात है उसको गौण कर देना, छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। क्यों? कि एक शुद्धात्मा जो दिखाने की बात है वो बहुत बड़ी बात है। अनंत काल में शुद्धात्मा का, अपने परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, तो ये तो सारे संसार को अभाव करने की, अनंत जन्म मरण का नाश करने की बात है। वो बात कहने वाले का कोई भाषा में चूक हो जाए तो उस पर ध्यान देंगे, तो वो जो कहता है उस पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए वो बात समझ में आए तो भी गौण कर देना, ऐसी सूचना उन्होंने की है। क्योंकि जीव की अनादि की दोष दृष्टि है, जीव की अनादि की दोष दृष्टि है, इसलिए दोष जल्दी उनको दिखता है दूसरे का, अपना नहीं दिखता है। दोष दृष्टि में ये अवगुण है कि दूसरे का दोष जल्दी दिखता है, दिखता है, और अपना दोष उसको नहीं दिखता है, और दूसरे का गुण नहीं दिखता दोष दृष्टि में, गुण होते हुए भी नहीं दिखता, परंतु अपना गुण का वो थोड़ा भी होगा तो बड़ा करके दिखाएगा। ये दोष दृष्टि का कार्य है। तो आचार्य श्री ने इस बात का संकेत करके दोष देखने की दृष्टि को छुड़ाई है कि तुम हमारे निज वैभव को देखना और शुद्धात्मा के स्वरूप को देखना और दोष को मत देखना। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। मैंने मेरी जितनी संपत्ति है मुड़ी है, मैंने उसका वो उसकी कमाई की है, मैं मुनि दशा तक पहुंच करके आत्मशुद्धि की कमाई मैंने किए, आत्मगुणों को प्रकट किया है, उससे मैं कहूंगा, मेरे अनुभव से बात करूंगा, ऐसा कहते हैं। उस पूरा निज वैभव सबसे मेरे पूरे वैभव से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। इस गाथा की टीका करते हुए मैंने ऐसा निर्णय किया है, निर्धार किया है कि मुझे शुद्धात्मा दिखाना है। मेरे आत्मा का यह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। ये जो मेरा ज्ञान है वो समस्त वस्तुओं को प्रकाशन करने वाला है, जानने वाला है, ऐसा निर्मल ज्ञान मेरे प्रकट हुआ है। और श्यादपद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरिहंत का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। मेरा निज वैभव कैसे उत्पन्न हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, कि अरिहंत भगवान का जो परमागम है उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसकी मैंने उपासना की है, इस तरह से मेरा ज्ञान खुला है। अनंत सर्वज्ञ परमात्मा है, वो वितराग देव का की जो वाणी है वो शब्द ब्रह्म है, वो परमागम है, उसकी मैंने उपासना की है। उपासना का मतलब क्या है कि उन्होंने जो कहा उसका मैंने अमलीकरण किया है, इसके नाम उपासना है, आराधना है। सिर्फ मैंने वाणी सुनी है उतनी बात नहीं है, परमागम पढ़ा है उतनी बात नहीं है, मैंने उपासना की है इसकी। ये श्रुत की उपासना बोली जाती है। और विपक्ष मैंने अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निष्तुष निर्वाद युक्ति से, युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या बोले, चैलेंज क्या है कि अन्यवादियों द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष है, इसका निराकरण मैं कर सकता हूं। क्यों कि इतना मैं समर्थ हूं और अति निष्ठुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से मेरा ज्ञान का जन्म हुआ है, निज वैभव का जन्म हुआ है। निष्ठुष मैंने निचोड़ करके, निर्बाध युक्ति मैंने कोई मेरे सामने कोई आर्गुमेंट टिक नहीं सकते, मैंने अकाट्य बात है, मेरी बात कैसी है, अकाट्य बात है, कोई काट नहीं सकते। इस प्रकार से मेरा ज्ञान रूपी वैभव का जन्म हुआ है और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गंधर्व आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया है जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो मेरा जो निज वैभव उत्पन्न हुआ है उसमें सर्वज्ञ भगवान से लेकर के गणधर आदि से लेकर के मेरे गुरु पर्यंत जो है उनका जो उपदेश है, उपदेश का प्रसाद मैंने, उनकी जो कृपा है और अनुग्रह है, मेहरबानी है, इससे मेरा जन्म हुआ है। इसलिए मैं मेरे वैभव से कहता हूं फिर भी अहम भाव नहीं है। अरिहंत भगवान कैसे हैं कि निर्मल विज्ञान गुण आत्मा में अंतर्लीन है, शुक्ल ध्यान में विराजमान है। आज अगर शुक्ल ध्यान को देखना है प्रकट रूप से तो अरविंद भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना और शुक्ल ध्यान में विराजमान होते हैं 13वें स्थान में। तो अपने को प्रकट शुक्ल ध्यान का दर्शन उसमें होता है। ऐसे परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु, इसके नीचे वाले गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, उनके प्रसाद रूप से दिया गया है, इनके उपदेश की प्रसादी है, मेरा निज वैभव है वो उनके प्रसादी है। जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश दिया, हमारे पर कृपा करके उपदेश दिया था उन्होंने, एक उपदेश लिया है इसके पीछे कितना भाव भरा है। हमारे सर्वज्ञ देव ने भी हमारे पर कृपा की, गंधर आदि से लेकर के हमारे जो गुरु है उन्हें सबों ने हमारे पर कृपा की, इनके उपदेश की प्रसादी है, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरी मुड़ी है, वही मेरा निज वैभव है। ऐसे पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो वो वैभव में क्या भरा है वो कहते हैं, निरंतर जड़ता हुआ, निरंतर जड़ता है उसमें से, मेरे वैभव में क्या है, निरंतर एक झरना झरता है, स्वाद में आता है जो सुंदर आनंद है, ये मेरा परिणमन का प्रकार है। नग्न दिगंबर मुनि है, जंगलवासी है, कहते हैं कि मेरे परिणाम में, मेरे वैभव में निरंतर सुंदर आनंद झरता है, मैं उसमें ऐसा निमग्न हूं, अंतर्लीन हूं कि मुझे पता ही नहीं पड़ता कि कितनी ठंड पड़ती है, कितनी गर्मी होती है, क्या बारिश होता है, क्या होता है, मेरा उपयोग ही नहीं जाता ना। यहाँ तो ठंड होती है तो शरीर को सर्दी लग जाती है, लगता है तो मेरे को सर्दी लग जाती है, लेकिन लगती है शरीर को, शरीर का जो होता है वो होता है, वो तो आनंद में नहीं है। उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन रूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। तो मेरा जो ज्ञान का स्वसंवेदन है वो बहुत प्रचुर है, मैंने तीव्र है, उसकी डिग्री भी बहुत है, और उसको आनंद की मुद्रा मोहर लगी हुई है। जैसे अपने अपने ट्रेडमार्क होते हैं ना, गवर्नमेंट का वो सिंबल है, ऐसे मेरे स्वसंवेदन का सिंबल है आनंद, सुंदर आनंद, आत्मानंद, ये मेरा स्वसंवेदन का सिंबल है। और प्रचुर स्वसंवेदन चलता है, करंट चलता है आनंद का भीतर में, और वो आनंद का और ज्ञान का करंट में मैं लीन हूं, मुझे बाहर का कोई पता नहीं चलता। ऐसे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्यों? जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं, ये शुद्धात्मा के अवलंबन से आनंद और ज्ञान का स्वसंवेदन उत्पन्न हुआ हो, उसी के माध्यम से, उसी के दौरान मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा। देखो दिखाने वाले किस तरह से दिखाते हैं, सिर्फ भाषणबाजी नहीं है, अपना प्रचुर स्वसंवेदन और आनंद का परिणमन को लेकर के वो दिखाते हैं कि देखो ये शुद्धात्मा ऐसा है, स्वरूप से एकत्व है और पर से बिल्कुल भिन्न है। पर से भिन्न है, कोई पर की अपेक्षा नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर क्षेत्र पर द्रव्य पर काल और पर भाव, ये इनका अंतर्बाह्य रूप है, ये इसका सबूत है। देखो कहीं भी उनको परद्रव्य से वो संबंध रखते नहीं है, वो बात वहां तक है कि उनको सुनने के लिए देवलोक में से इंद्र भी आता है। देव वो अकेला नहीं आता, उनके साथ जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा चार्टर प्लेन होता है ना, तो उनके साथ तो इसके बराबरी में होता है, हजारों लाखों देव आते हैं। कितने? उनको कोई लेना देना नहीं, सामने भी नहीं दिखेगा। ऐसे कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती आते हैं, कोई पड़ी नहीं है, तो केवल निष्प्रह है। और वो धर्म के लालचू है, धर्म पाने के लिए आते हैं, धर्मलोभी जीव है। कैसे हैं? पैसे के नहीं, धर्मलोभी जीव है, वह धर्म पाने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए इनके प्रति कुछ सद्भाव रखना है, वो भी बात नहीं है। कभी भी निकल जाते हैं, उपदेश का विकल्प आया तो उपदेश दिया, वरना मौन रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, और कभी भी क्षेत्र छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ज्यादा लोग आते हैं इसलिए मुझे यहाँ ठहरना चाहिए, वो बात उनको नहीं होती, उतने अपने कार्य में वो लगे रहते हैं। इतने तो शास्त्र देखो उनको क्या जरूरत थी लिखने की, शास्त्र लिखा लायक जी में पढ़ करके अपना काम, इस समय सार पढ़ करके कृपा गुरुदेव को शुद्धात्मा प्रकट हो गया। हे कुंद कुंदादि आचार्यो, आपना वचनो आ पामर ने पोताने पामर गणाया छे, स्वरूप अनुसंधान माटे उपकारी थया, ते अर्थे आपने नमस्कार करिए छे। एवा वचनो छे નિજ વૈભવથી નીકળેલા, કે જે વચનવાળા નિમિત્તે કૃપાળુ દેવ જેવા મહાત્માઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમાં છે પાછળ ઉપદેશના ડાયરીમાં છે, એમને આત્મનોંધમાં છે, આત્મનોંધમાં છે. પ્રસિદ્ધ વચન છે. એટલે એવું નિમિત્તત્વ પીડ્યું છે આ શાસ્ત્રમાં, એવું નિમિત્તત્વ પીડ્યું છે કે આવા મહાત્માઓને જન્મ દે છે, કે જેને લઈને બીજા હજારો લોકો આ જૈન ધર્મમાં પ્રભાવિત થાય છે. જૈનો ને જૈનેતરો બધા પ્રભાવિત થાય છે, એ સમર્થ વાત છે. એ પછી પોતાના ગુરુ નો ઉપકાર માને છે, કેવા હશે કૃપાળુ દેવ જયારે કુંકુમ જેવા આચાર્ય નો ઉપકાર માને છે, તો એ આચાર્ય એમના ગુરુ નો ઉપકાર માને છે, કેવા હશે દાદા ગુરુ, કૃપાળુ દેવ ના દાદા ગુરુ ના. આપણા તો પરદાદા થાય છે, એવું છે.
લિખતે જાતે હૈ છોડતે જાતે હૈ, ઇકઠા કરકે ભી નહીં રહેતે
હૈ,
લિખતે જાતે હૈ તાત્પર્ય મે આપ છોડતે જાતે
હૈ. હા, છોડ દેતે હૈ
उसको, तो राग नहीं रहते
हैं, जो भी लिख देते वहां छोड़ के निकल जाते हैं. और वो धर्मलोभी जीव हैं, वो इसके पीछे पीछे घूमते फिरते हैं कि कभी कहीं लिखते हैं, कभी कहीं लिखते हैं, तो वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं. वो जैसे यहाँ से निकल जाते हैं तो वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं.
लिंक कैसे बैठता है, लिंक भी बैठ जाता है.
हाँ, बराबर लिंक बैठता है. ऐसे धर्मों के प्रति गरजवान लोग थे, जो जंगल में मुनियों के पीछे घूमते रहते थे. और मुनि लोग हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां कोई रथ कोई साधन नहीं ले जाते हैं. कभी घोड़े पे जाना होता है तो कभी पैदल भी जाना पड़े. એવું નહીં કે સડક ને રસ્તો હોય ત્યાં જ જ્યાં મુનિ હોય, એમનું કઈ ઠેકાણું નહીં ક્યાં હોય. તો ઘણા દિવસ સુધી મુનિઓના દર્શન ન થતા હોય તો એ લોકો ગોતવા નીકળે જંગલમાં, ક્યાંય બેઠા છે, ક્યાંય દર્શન થાય છે. એટલા ગરજવાન ને એટલો એને પરિશ્રમ એને પાછળ લે છે. એ લોકો મોટા મોટા માણસો, રાજા મહારાજાઓ, શેઠિયા લોકો એવી રીતે પાછળ ફરતા હોય. એવી અમૂલ્ય વસ્તુ એ લોકો જંગલમાં મૂકી દે, એ લોકો સાચવે અને રાખે, તો મેં સેંકડો વર્ષ સુધી ત્યાં ધાર્મિક જનોને એ ચીજ કામમાં આવે છે. મેં જો એ દેખાવું तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव से प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना. मैं ये दिखाऊं कि ऐसा शुद्धात्मा है तो मान्य करना उतनी बात नहीं, क्या अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्रमाण करना, उसको अनुभव से मान्य करना. अनुभव की बातें हैं ये सुनने की बात नहीं है. बेंगलोर में बात चले थे, ये अनुभव की बात है, वो सुनने की बात नहीं है. कोई ऐसे पूछता है कोई आपका अनुभव को बताइए, बोलिए. हाँ, ये सुनने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है. और अनुभव से ही वो समझी जाती है, बिना अनुभव से वो समझ में नहीं आती। शुद्धात्म स्वरूप का कितनी भी शब्द कथन वाणी सुनने में आए हैं, उसको सुनकर के कल्पना कभी नहीं करना कि ऐसा आत्मा है। अनुभव करके नक्की करना, क्योंकि चीज अनुभव की है, सुनने की नहीं है, न कहने की है न सुनने की है। परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीत, उसको दूसरा संकेत कहा है, अनुभवांश लिया है। शब्द से सुनकर के बहुभाव लोग विचार करके उसका निर्णय करता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। ऐसा वैचारिक निर्णय वो सही निर्णय नहीं है, अनुभवान से प्रतीत होकर के जो निर्णय आता है वही सही निर्णय है। उसमें अस्तित्व ग्रहण होता है वेदन से, वो बात कृपालु देव ने जो पीछे उपदेश छाया है और दो सौ बीस नंबर के वचन में है, वो 220 के व्याख्यान सार एक, उपदेश छाया नहीं, व्याख्यान सार एक और दो के इसमें एक में 220 नंबर में है। अस्तित्व ग्रहण अनंत काल से हुआ नहीं, एक दफे भी हुआ नहीं, एक दफे भी अस्तित्व ग्रहण हो गए तो ये सम्यक दर्शन होने का, अनुभव होने का अंग है, कारण नहीं लिखा, अंग है, अवयव है। वो यहां से पूरा अवयवी का पता चल जाता है। तो ऐसा निर्णय होने से, अनुभवांश से निर्णय होने से, यानी वेदन से निर्णय, ज्ञान वेदन से निर्णय होने से फिर प्रकृति जोर नहीं करती, प्रकृति जोर नहीं करती। ज्ञान सिद्धू छे सौ विकल्प दशा मां, ज्ञान सिद्धु वाच्य ने एटले वस्तु ने ग्रहण करे छे। जेम तमने कोई एम के भाई आ साकर नो गांगड़ो छे, तो तमारू ज्ञान एने सिद्धु ग्रहण करे, ज्ञान में ए वस्तु आवी जाए, एनो विकल्प ने विचार करे एमने, वस्तु ज्ञान में आ जाए सिद्धि, एम ज्ञान अने वस्तु ने सीधो संबंध थाय, एवी रीते आत्मा ज्ञान वेदन थी सीधो, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान में आवे, पछी विकल्प एने रटण करा करे बीजी बात छे, पण ई ज्ञान ने अनुसरे छे विकल्प। ए पहला मानस विचार थी विकल्प थी नक्की करे तो विकल्प ने ज्ञान अनुसरे ये बराबर नहीं, ज्ञान ने विकल्प अनुसरे तो वांधा नहीं, पर विकल्प ने ज्ञान अनुसरे तो ये राग नो अनुसरण थी गयो, आत्मा नो अनुसरण नहीं थतो।
विकल्प ने ज्ञान केवी रीते
अनुसरण
थी गयो, विकल्प ने ज्ञान केवी रीते
अनुसरण थी गयो। एवुं छे, विकल्पात्मक निर्णय करे छे कि आत्मा ध्रुव छे, आत्मा कुटस्थ छे, आत्मा परम परिणामिक भाव स्वरूप छे,
आनंद स्वरूप छे,
आनंद स्वरूप छे, पूर्ण शुद्ध स्वरूप छे, एवं आत्मानु जे स्वरूप छे ए विकल्प मां आवे छे, ज्ञान मां जे नथी आवतो पण विकल्प मां आवे छे, અને વિકલ્પને રટણ કર્યા કરે તો જ્ઞાન એની પાછળ જાય છે, વિકલ્પની પાછળ જાય છે, આત્માની પાછળ નથી જતો। જ્યારે ભાવભાષણમાં વિકલ્પની આડ વિના સીધું જ્ઞાન લક્ષણ થી જ્ઞાન લક્ષણ ના આધારે જ્ઞાન લક્ષણ વડે જ્ઞાન લક્ષણ ના આધારે સીધો જ્ઞાન સ્વભાવ વેદન પૂર્વક વેદન અંશે જ્ઞાનમાં આવી જાય છે અને એનો મહિમા ઉપડે છે એટલે વિકલ્પ છે એનું એના વિકલ્પો ચાલે છે એટલે વિકલ્પ એ જ્ઞાનનું અનુસરણ કરે છે પણ એ વિકલ્પ વધશે નહીં નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ થતું જશે અને વિકલ્પ મટતા જશે વિકલ્પ વધશે નહીં એમ છે
जिसका परिचय होता है जिस चीज का परिचय होता है ज्ञान उसको ग्रहण करता है बिना परिचय तो
परिचय बिना पहचान नहीं बिना परिचय पहचान नहीं
तो उसके पहले स्टेज में परिचय होना जरूरी है
परिचय का विषय देखो ये दो चार छह महीने का बच्चा होता है उसकी माँ का हाथ को समझता है दूसरा भी उसको गोद में लेता है दूसरा भी उठाता है और उसकी माँ भी उठाती है लेकिन वो उसको समझता है कि नहीं समझता क्यों इसको परिचय है ज्यादा किसका परिचय ज्यादा है इसकी माँ का परिचय ज्यादा है दूसरे का परिचय नहीं है परिचय में पहचान होती है परिचय से पहचान बिना परिचय कोई चीज की कोई व्यक्ति की पहचान नहीं होती और बिना पहचान कोई अभिप्राय पूर्वग्रह होना नहीं चाहिए बनाना नहीं चाहिए
विकल्प में ग्रहण होता है तो परिचय नहीं होता वास्तविक विकल्प में जो ग्रहण होता है उसमें परिचय नहीं
होता परिचय नहीं है वो सुनी हुई बात पर विचार चलता है बौद्धिक बुद्धि चलती है और कुछ कल्पना करके ऐसा मैं हूं ऐसा मेरा आत्मा है ऐसा मोह ऐसा ऐसा उनको निश्चय होता है तो उसमें पहचान नहीं है
इसे भेद विज्ञान का जो प्रोसेस है पहचान करने का प्रोसेस है
वो पहचान का प्रोसेस है दूसरी बात परिस्थिति क्या है कि अनादि से जीव को राग से एकत्व बुद्धि है विकल्प में एकत्व बुद्धि है और वही एकत्व बुद्धि वाला विकल्प उसमें ज्ञान गौण हो गया है ज्ञान को चुप गया है जी तो राग की प्रधानता में निश्चय किया ज्ञान ने और वेदन अंश में ज्ञान लक्षण में ज्ञान के आधार से ज्ञान की प्रधानता में निश्चय हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ये बहुत बड़ा अंतर है मैंपणा किसमें रखा कि राग में विकल्प में मैंपणा रखा और निर्णय हुआ वो ज्ञान सही नहीं है और ज्ञान स्वभाव जहां प्रकट है ऐसा ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निश्चय हुआ वो निश्चय सही है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है
अंधेरा प्रकाश के जैसे
इतना बड़ा फर्क है तो सही निश्चय होता है पहचान होती है उसको अनुभव अल्पकाल में होता ही है इसलिए उनको अंग बताया कि वो स्वानुभव का अंग है तो उसको तो हो ही जाएगा उसको अनुभव नहीं होगा ऐसा बनने वाला है ही नहीं
વિકલ્પ
ને
એટલે
શું શું છે કે વિકલ્પ ની મુખ્યતા ક્યાં સુધી છે વિકલ્પ માં હું પણ છે ત્યાં સુધી જ્યાં હું પણ ત્યાં મુખ્યતા જ્યાં મારા પણ ત્યાં મુખ્યતા એ તો અમુક સ્થિર બને છે કે નથી બનતો જ્યાં મારા પણ ત્યાં મુખ્યતા એવી રીતે અનાદિથી જીવને વિકલ્પમાં રાગમાં પોતાપણું છે એટલે એની મુખ્યતા વર્તે છે એની મુખ્યતામાં વર્તતો વર્તતો નિર્ણય કરે એ સાચો નહીં એમ કહેવું છે. પણ જ્ઞાન લક્ષણથી, જ્ઞાન વેદનથી, જ્ઞાનની મુખ્યતામાં જ્ઞાન સ્વભાવનો નિર્ણય થાય તો તે યથાર્થ છે અને એ સમ્યક દર્શનનો અંગ છે, એ સમ્યક સ્વાનુભવનો અંગ છે. એવી વાત છે અંદર. और यदि कहीं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाओ, चूक थसे तो क्या थसे, ये ध्यान नहीं रहे कदाच. क्या भाषा ना अलंकार बराबर वापरो छे के नहीं, आ श्लोक में मात्रा बराबर छे के नहीं, सो कोई अक्षर आगो पाछो थी जाए बोलवा करवामां, हाँ ये प्रकरण में क्या चूकी जाओ तो दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना. तुमको दोष का पता लग जाए लेकिन सावधान नहीं होना, ये देखो इसका दोष हो गया, ये इसकी भूल है, ये मत देखना. दोष को ग्रहण करने में सावधान मत होना.
पहले से वार्निंग आपने,
हाँ
सावधान
એટલે દોષ ગ્રહણ કરવામાં જાગૃત નહીં રહેતો તો સાવધાન નહીં રહેતો એમ. જાગૃતિ તારી હું જે વિષય તને શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવું છું એમાં રાખજે, સાવધાની ત્યાં રાખજે એમ કહેવું છે. એટલે કે એ ભારે હારે સૂચના કરી છે કે આ ભૂલ નહીં કરતો તો શું. શાસ્ત્ર સમુદ્ર કે બહુત સે પ્રકરણ હૈ, ઇસલિયે યહાં સ્વસંવેદન રૂપ અર્થ પ્રધાન હૈ. શાસ્ત્રનું પ્રકરણ એટલે શાસ્ત્ર તો સમુદ્ર જેવો વિષય છે શું, પણ અહીંયા તો સ્વસંવેદનની વાત, અનુભવની વાત ચાલશે, બીજી કોઈ વાત અહીંયા આડી અવળી નહીં ચાલે. ઇસલિયે અર્થ કે પરીક્ષા કરવી ચાહીએ, માટે જે કાંઈ સમજણ છે, પ્રયોજન છે, એ અહીંયા અનુભવનું પ્રયોજન છે, એની પરીક્ષા કરીને તું સાંભળજે કે આમાં અનુભવ શું છે, આમાં અનુભવ શું છે, અનુભવ કેવી રીતે આવે છે, એના ઉપર તું ધ્યાન દેજે, અહીંયા જાગૃતિ રાખજે એમ કહે છે. અને તું પણ અમે કહીએ એનો પ્રયોગ કરીને, અનુભવ કરીને માન્ય કરજે કે બરાબર છે આપની વાત, એમને માન્ય કરતો નહીં, એવી રીતે વાત લીધી છે અમે. ગાથા તો છે શુદ્ધાત્મા બતાવવાનો નિર્ણય કરવાની, એમાં કેટલી વાતે પોતાને દેશાની લીધી છે અને કેટલી સૂચનાઓ કરી છે.